ओम शांति। बाबा की याद में अच्छा लग रहा है सबको। तीन दिन से आप स्वउन्नति का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसमें आनंद आया? हाँ, बरोबर देख के बताओ अपने अंदर। क्योंकि वही चीज लंबे समय तक हम कर सकते हैं जिसमें हमें आनंद आता। तो हमें बाबा की याद में नियम मर्यादाओं में चलने में, पढ़ाई में आनंद आना चाहिए। है? मुश्किल तो नहीं लग रहा है? क्योंकि संगम युग में अतीन्द्रिय आनंद गाया हुआ है, है ना? शास्त्रों में गायन है कि गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछे? तो वो गोप गोपियां कौन है? तो पूछे, हमसे लोग पूछे। हाँ, लोग पूछे हमसे कि अतीन्द्रिय सुख आपको आता है, याद में आनंद आता है? आज भी बाबा ने कहा ना कि इस लंबी याद की यात्रा की दौड़ी कौन दौड़ सकता है, कौन दौड़ सकता है? आज बाबा ने क्या कहा? हाँ, जिनको बाबा से सच्ची प्रीत हो वही लंबी याद की यात्रा। लंबी क्यों कहा बाबा ने? हाँ? लंबी माना कितनी लंबी है बताइए? जीवन भर, है ना? जीवन भर की बात है ना? बाबा कहते हैं ना, जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। कल भी बाबा ने कहा कि मरने पर हो तो भी ज्ञान देना चाहिए, ज्ञानदान का शौक होना चाहिए। तो ये बातें जो बाबा करते हैं वो हमें अपने आप में देखनी है। प्रैक्टिकल भागवत का समय तो अभी है ना? अभी स्वयं भगवान आए हैं और प्रैक्टिकल भगवान का कार्य चल रहा है और हम भगवान को पहचान कर उसकी याद के सुख में रहने वाली आत्माएं, गोप गोपियां। साधारण बताया ना, गोप गोपियां माना साधारण नर नारी, क्योंकि भगवान को पहचानने का विवेक साधारण मनुष्य आत्माओं में। कितने आश्चर्य की बात है। ये नहीं कहा है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गुरुओं से पूछो, पंडितों से पूछो, विद्वानों से पूछो, ये गायन नहीं, क्योंकि वो तो अपने अहम में रहते हैं, विद्वत्ता के अभिमान में रहते हैं, तो वो परमात्मा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि भगवान तो साधारण मानव तन में आए ना, माध्यम साधारण लिया। अगर माध्यम चमत्कारी होता तो लोग माध्यम में ही फंस जाते, है ना? ब्रह्मा बाबा माध्यम बना ना, अगर ब्रह्मा बाबा चमत्कार करते जैसे आजकल के मनुष्य गुरु करते हैं तो लोग भगवान को भूल गए, उनमें ही अटक गए कि गुरुजी पार कर देंगे, गुरुजी उद्धार कर देंगे। तो अगर ब्रह्मा बाबा भी चमत्कारी बनते तो परमात्मा को पहचानने की मेहनत कौन करता है? तो इसलिए बाबा ने साधारण माध्यम लिए। तो साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचानना विवेक की बात है। बाबा कहते हैं ना, बुद्धि चाहिए, है ना? ये बुद्धि की बातें हैं, समझने की बातें हैं। मुरली में बाबा कहते हैं ना, तो जिन्होंने ब्रह्मा तन में आए हुए शिव बाबा को पहचान लिया उनको अतीन्द्रिय आनंद अनुभव हुआ। अतीन्द्रिय आनंद माना कौन सा आनंद? अतीन्द्रिय आनंद माना आत्मा इंद्रियों से पर होकर, माना देह भान से न्यारी होकर, एक ईश्वर की याद के आनंद में रहना, वो है अतीन्द्रिय आनंद। तो देह भान से न्यारे होने में आनंद आना चाहिए। बाबा की याद में बैठते हैं तो हम देह भान से न्यारे होते हैं, खुद को आत्मा समझते, बुद्धि में स्पष्ट रहता है कि शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। तो इस अभ्यास में आनंद आना चाहिए। इंद्रिय रसों के आनंद में तो कलयुग में भी रहते थे, है ना? अच्छा खाना तो आनंद आता है ना, कहते हैं ना, आज तो बड़ा टेस्टी भोजन था, मजा आ गया, ऐसे बोलते हैं। जीभ का रस है ना, खाने का आनंद, उस स्वाद और रस के कारण कितना भटकते हैं। ये चीज फलानी जगह खाने जाएंगे तो ये जीभ रस, स्वाद रस, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है ना दुनिया में भी, है ना? आप देखते हो ना, आप तो दुनिया में रहते हैं, शादियों में कहां 5-10 चीजें बनती थी, आजकल 50-100-150 चीजें। आखिर इंसान खाएगा तो कितना खाएगा? पर क्योंकि उनको और कुछ तो पता नहीं है ना ज्ञान, तो वो तो इसी में ही विस्तार में जा रहे। बातें करने का आनंद, इसलिए मौन रहने में परेशानी होती है, कईयों को परेशानी लगती है ना कि भाई कब भट्टी पूरी हो तो हम बात करें, ऐसे हो जाता है ना, क्योंकि बात करने का रस, अपने आप से बात करना आता नहीं, बाबा से बात करना आता नहीं, ज्ञान का मंथन करना नहीं आएगा, और कहेंगे बहने कि भाई मौन रखना है तो क्या लगेगा, परेशानी लगेगी। घर में कोई काम नहीं है, फ्री बैठे हैं तो राह देखेंगे, कोई आवे तो बात करे, कोई आवे तो बात करे, है ना, क्योंकि बात का रस, बोलने का रस। तो वो भी इंद्रिय रस हो गया ना, मुख से बात करें तो आनंद आवे, अपने आप में आनंद, तो इसमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है ना। कहते हैं ना आत्मानंद निजानंद स्वरूपानंद, तपस्या में तो यही आनंद गाया हुआ है। तो हमें स्वचिंतन में आनंद आया देखना है ना, कि अपने ही दिव्य शुद्ध आत्म स्वरूप में आनंद। देखने का आनंद, नए 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 स्थान देखेंगे, दृश्य देखेंगे तो आनंद आता है, नहीं तो कहेंगे घर में बैठे हम तो बोर हो गए, कहीं बाहर ले जाओ। देखने का आनंद, वो भी इंद्रिय आनंद हुआ ना, क्योंकि बहिर्मुख होते हैं ना, देखते हैं तो दूसरों को देखेंगे ना, दूसरी चीजें देखेंगे, तो स्व से तो पर में चले गए ना। सुनने का आनंद, ये इंद्रिय आनंद है। बाबा ने आकर तो पहला ही पाठ कौन सा पढ़ाया हमें, कि तुम इनसे अलग हो। कहां इंद्रिय रस में डूबे हुए थे, और बाबा ने पहला ही पाठ ये पढ़ाया कि तुम इससे अलग हो। आत्मा इतनी देह से अटैच हो गई तो देहभान नेचुरल हो गया ना, हमें अभ्यास करना पड़ा कभी कि मैं देह हूं, मैं स्त्री हूं, मैं सुंदर हूं, रोज अभ्यास करना पड़ा अज्ञान काल में, नहीं, नेचुरल देहभान हो गया, माना हमारी बुद्धि कितनी देह में लगी रही होगी, है ना, तभी हम देह भान नेचुरल हो गए। और नेचुरल क्या होना चाहिए, आत्म भान नेचुरल होना चाहिए, है ना, हमें अभ्यास हो जाए, हम अपने आप देह भान से न्यारी स्थिति में ही स्थित रहे, और उसमें आनंद आए, अच्छा लगे। परमानंद गाया हुआ है तो परम आनंद किसमें आता है, किसमें आता है, परमात्मा में। परम तो वही है ना, ऊंचे से ऊंचा है, तो हमें परमानंद बाबा का आनंद देखो, भक्ति में हठ दमन की तपस्या है। कितना कठिन उनका अभ्यास होता है, फिर भी सन्यासियों के नाम कौन से हैं? है हठ दमन की तपस्या, सन्यास, और नाम क्या है? शिवानंद, चिदानंद, चिन्मयानंद, परमानंद, सारे नंद नंद, आनंद आनंद। तो कभी सोचे इस पर कि है सन्यास और आनंद नाम क्यों है? क्योंकि वैराग्य में आनंद, त्याग में आनंद, भोगने में आनंद नहीं, त्याग में आनंद। तो सच्चे बेहद के सन्यासी तो कौन है? माताएं, हम सभी है ना, हम बेहद के सन्यास। तो हमें तो बेहद का आनंद आना चाहिए। बाबा की याद का आनंद, और जिसको आनंद आएगा उसको थोड़ी योग में नींद आएगी, योग में झुटके नहीं आएंगे, थकान नहीं होगी, सिर भारी नहीं होगा। ये सब क्यों होता है कि योग में बैठी पर माथा भारी हो गया, नींद आ गई, माना हमने अभ्यास बरोबर नहीं किया। जो यथार्थ अभ्यास करेगा वो तो लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और जैसे ही आप हल्के हो जाएंगे, हल्के कैसे होंगे, है ना, इस मिट्टी से अलग हो जाते हैं। भाई ये 60 किलो का है, ये 70 किलो का है ना, ये 80 किलो का है, हाँ, इतने भारी शरीर से आत्मा संकल्प मात्र से, चिंतन से डिटैच हो जाते हैं। और जैसे ही डिटैच होती है तो हल्कापन अनुभव होता है। बाबा तो टोटल लाइट हमें बनाते हैं ना, देहभान से न्यारा किया, आत्मस्वरूप का ज्ञान दिया, इंद्रिय रसों में डूबे हुए थे, एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि और कोई गृहस्थी नहीं है तो इंद्रिय रसों की गृहस्थी है। सारा दिन वही विचार चलते रहेंगे, ये खाएं, ये पहने, इधर जाएं, ये देखें, तो ये इंद्रिय रसों की गृहस्थी है। जैसे गृहस्थी में ये काम वो काम, इसके घर जाना, उससे मिलना, ये प्रसंग, वही बातें सोचते रहते न। अज्ञान काल में क्या सोचते थे, सारा दिन वही चिंतन चलता है ना। तो ये इंद्रिय रसों की गृहस्थी, अंदर अंदर मन को कितने आकर्षण होते जाते हैं, है ना? फिर बीती बातें, मैंने जो कुछ किया हम उधर घूमने गए थे, उस दिन हमने ये खाया था बहुत अच्छा, तो सारा वो भी तो क्या होता है, इंद्रिय रसों की ग्रस्ती। तो बाबा ने हमारा जीवन सादा सरल सात्विक बना दिया, तो ये रस कम होंगे ना। क्यों बाबा ने हम बच्चों को ये यूनिफॉर्म पहनाया? ताकि बुद्धि उसमें फंसे नहीं, है ना? नहीं तो कपड़ों में कितनी बुद्धि जाती है कि नहीं। इसके साथ ये पहने, इसके साथ वो मैच होगा, है ना, सारा बुद्धि उसमें ही लगी रहती। बाबा ने बिल्कुल सफेद कपड़े पहना दिए कि ताकि बुद्धि उसमें जावे ही नहीं ज्यादा। खाना पीना सात्विक बना दिया, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, योगिक भोजन बाबा की याद में बनाना और बाबा की याद में खाना, सात्विक। बहुत टेस्टी बनाते हैं तो क्या होता है, अनुभव से बताइए। फिर बार बार खाने की इच्छा होगी ना, दूसरों को नहीं देंगे, खुद के लिए ज्यादा रख लेंगे। क्योंकि स्वाद आ गया ना, तो दो को नहीं देंगे तो चलेगा, पर मेरे को खाना है दोबारा करके रख लेते हैं, तो ये स्वाद कराता है ना सब। तो बाबा ने एक ही नियम ऐसा बता दिया कि पवित्र के हाथ का ही खाना है, योगी के हाथ का खाना, इसलिए सब बंद, दुकान में, ठेले में, शादी में, मुरादी में, बर्बादी में, कहीं भी नहीं खाना है। हा? तो ये जरूरी है, ये नियम बाबा ने क्यों बनाया है, ताकि इस रस में से हम निकले। सिंपल लिविंग, फैशन नहीं, व्यसन नहीं, फिल्में होटलें नहीं, क्योंकि ये इंद्रिय रस। तो प्रैक्टिकल बाबा ने सादा सरल सात्विक जीवन जीने की कला हमें सिखाई, ताकि डिटैच, लाइट, योगी बनना है ना, आत्मा को वापस घर जाना है। रोज बाबा याद कराते कराते हैं ना मुरली में रोज, तो समझते हो ना कि जाना है कि नहीं जाना है। रोज पूछो अपने आप से, ये रोज अपने आप से पूछना है कि ये सिर्फ बातें नहीं है, सत्य है, सचमुच हम आत्माओं को वापस जाना है। अब तक तो यहीं चक्कर लगाते रहे ना, घर थोड़ी गए थे, एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा, हम तो यहीं घूम रहे थे ना, तो यहीं घूम रहे थे फिर भी कहते थे कि ऊपर गए। निर्वाण में गए, वो तो झूठ था। ये तो सत्य है ना कि चक्र पूरा हो रहा है, बाबा आए हैं लेने के लिए। वापस घर जाना है। तो ये रोज खुद को पक्का कराना है। उड़ेगी वो ही आत्मा ना जो हल्की होंगी। तो कमल फूल बाबा ने बना दिया, तो कितनी बातें हमारी झंझटें कम हो गई, हम कितनी बातों से निकल गए, लाइट हो गए। नहीं तो देखो कपड़ों के नाम पर कितना खिटपिट लड़ाई झगड़ा होता है, मेरे को ऐसा ही चाहिए, मेरे को यही लाके दो, है ना, यही खाना है, ऐसा ही बनना चाहिए, कितनी बातें इसमें होती। तो बाबा ने कमल फूल, नया जन्म है, अलौकिक जन्म है, मर्जीवा जन्म है, जीते जी मरे ना, किस किस बात में मरे हैं, हाँ, फिर तो नहीं जाग जाते, जिंदा हो जाते, जीते जी मर्जीवा जन्म है ना, तो रस स्वाद से भी तो मरे ना। अब इस मर्जीवा जन्म में, इस अलौकिक जीवन में, अब जो कुछ हम करते हैं, सेवा करते हैं निमित्त बनकर, या निमित्त बनकर घर संभालते हैं, नौकरी करते, कुछ भी, अलौकिक जन्म मर्जीवा जन्म तो सबका है ना, सबका है कि सिर्फ समर्पितों का है, सबका है, हम सबका नया जन्म। तो इस नए अलौकिक जीवन में अब हम जो कुछ करें, नौकरी धंधा सेवा सेंटर घर कारोबार कुछ भी, उसमें भी हल्का बनने के लिए बाबा ने क्या कहा, ट्रस्टी बन जाओ, ट्रस्टी हैं आप, अब आप मालिक नहीं है, मालिक बाबा है, अब हम क्या बन गए, ट्रस्टी। पहले तो हम मालिक बन के टुकड़ा उठा के घूमते थे ना, तो भारी भारी थे, मेरे बच्चे हैं, मुझे करना है, मेरा घर है, ये है, तो हम भारी हो जाते थे, थक जाते थे। तो बाबा ने कहा तुम बोझ मुझे दे दो और तुम हल्के हो जाओ। तो बाबा को बोझ देना माना क्या, हाँ, हल्का होना माना क्या, ट्रस्टी माना हल्का होना, बाबा को देना माना हम निमित्त बन गए, अलग हो गए, बाबा की श्रीमत पर करना, ये है बाबा को देना, है ना, करना तो हमें ही है, बाबा को देना माना हम हाथ पांव जोड़ के बैठ थोड़ी जाना, हाँ, करना तो हमें ही है ना, पर श्रीमत, श्रीमत सिर्फ याद नहीं, भक्ति में भगवान भगवान करके भी पाप करते थे, सिर्फ याद नहीं, एक डाकू भी भगवान को याद करके डकैती करने जाता है श्रीमत पर। क्यों? अब सन्मुख बाबा आए, प्रैक्टिकल भगवान आए हैं। तो बाबा को देना माना श्रीमत पर चलना, मन वचन कर्म से, तन मन धन से, जो कुछ हम करें वो श्रीमत पर करें। तो ट्रस्टी, इसको कहेंगे ट्रस्टी। कहते हैं ना, एक गांव का व्यक्ति था, सिर पर गठरी लेकर खड़ा था। एक टैक्सी वाला निकला, उसको हुआ कि चलो बिठा लेता हूँ। कहते बैठ जा, मैं तो ऐसे भी, कहाँ जाना है? बोला बस स्टैंड जाना है। बोला बैठ जाओ। कहते नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं है मेरे पास। कहते बैठ जाओ, मैं तो वहीं जा रहा हूँ, तो तुम भी बैठ जाओ। तो बैठ गया, पर बैठने के बाद भी गठरी सिर पर लेके बैठे। उसने कहा अरे भाई, अब तो गठरी बाजू में रख दो। बोला नहीं, मेरी गठरी है ना, मेरी गठरी। तो बाबा ये मेरापन छुड़ाते हैं। बाबा को देना माना मेरापन समाप्त करना, कि मैं बाबा के तरफ से निमित्त हूं। हम सेंटर में निमित्त है, आप घर में निमित्त है, जो जहां है वहां निमित्त है। तो निमित्त और मालिक तो वो है, तो अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते, श्रीमत पर करना है। तो हल्के रहेंगे, फिर आप कितनी भी सेवा करेंगे, प्रवृत्ति करेंगे, कितने भी लोगों से मिलेंगे, तो भी अंदर से हल्के रहेंगे, न्यारे रहेंगे, कहीं भी अटैच नहीं होंगे। अटैच होना माना भारी हो जाना। आत्मा भारी तो तब होती है ना जब अटैच होती है। भाई मुझे दो सूटकेस पकड़ा दिए जाए तो मैं भारी हो जाऊंगी ना, कि भाई एक तो खुद का शरीर लेके चलना और ऊपर से दो भरी हुई सूटकेस लेके चलना। तो जितना अटैचमेंट बढ़ेगा, भाई दो सूटकेस हाथ में और दो सिर पर रख दे तो तो भारी लगेगा ना, मुश्किल लगेगा। तो अटैचमेंट से भारी लगता। आत्मा भारी क्यों होती है? मेरेपन से भारी होती है। तो बाबा ने हमें कह दिया कि तुम अब निमित्त हो, मालिक बाबा है, तुम निमित्त हो। तो देखो धीरे धीरे बाबा कैसे हमें हल्का करता है। पहले देह से न्यारा किया, इंद्रिय रसों से न्यारा किया, कमल बनाया और फिर ट्रस्टी बनाया। और बाबा अब आगे हमें क्या कहते हैं कि ट्रस्टी बनकर जो कुछ हम सेवा कर रहे हैं, यज्ञ चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, चाहे आप घर में रहते हैं तो भी, बाबा कहते हैं ना श्रीमत पर चलते हैं तो आपका घर भी यज्ञ है, आप भी यज्ञ से खाते हैं अगर श्रीमत पर चलते हैं तो। पर अब ट्रस्टी बनकर जो कुछ करते हैं उसमें भी बाबा आप कहते हैं फरिश्ता बनो और लाइट बन जा, फरिश्ता बन जा कि अल्टीमेट आखिर ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा ट्रस्टी बनकर कारोबार संभालते हैं, सेवा संभालते हैं, है ना, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, ऑर्गेनाइजर है, है ना। बाबा कहते हैं आपको तो आखिरी क्या बनना है, बाबा कहते हैं बेशक आप अच्छे स्पीकर बने हैं, अच्छे सेवाधारी बने हैं, अच्छे मैनेजमेंट करते हैं, अच्छा एडमिनिस्टर करते हैं, पर आखिर अच्छा योगी बनना है, हमें अच्छा योगी बनना है। तो फरिश्ता, अच्छा योगी बनना, परफेक्ट योगी, तो फरिश्ता। कर्म योगी हम हैं, पर बाबा कहते हैं कर्मातीत बनना है, माना सेवा में भी उलझना नहीं है, सेवा से भी पार जाना है। ये है स्थिति बनाते जाना। हम ये अभ्यास क्यों कर रहे हैं, हम नियम मर्यादाओं में क्यों चल रहे हैं, हम रोज पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ऊंची आत्मा स्थिति बनाना चाहते हैं। हमें कुछ बनना है, तो क्या बनना है, हम कहते हैं ना बाप समान बनना है, तो बाप समान बनना माना संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बनना, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता, संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता। ऐसे तो नहीं है ना कि हम यहां ही रहेंगे, जो संगम युग में है वो कोई वापस घर नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, हम यहां से ही सीधा सतयुग में ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। हर आत्मा को वापस घर तो जाना है, तो हिसाब किताब क्लियर करके जाना है, कर्मातीत बनना माना है ना क्लियर हिसाब किताब, विकर्म का हिसाब खत्म और सत्कर्म का हिसाब जमा जमा, उसका फल अभी नहीं खाना है ना, जमा करना है। तो आत्मा सतयुगी रोल शुरू कर सकेगी, उसी जमा खाते से करेगी ना। तो ये स्थिति हमें बनानी है, तो इसलिए बाबा ने सालों से पुरुषार्थ कराया है ना। आप में से भी कोई एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल, बीस साल, तीस साल, चालीस साल, पचास साल के भी ज्ञान में चलने वाले होंगे। और हम देखते हैं ना, हमारी दादियां भी है ना आज यज्ञ के आदि से हैं, तो आज तक भी तो दादियां भी तो अपना अभ्यास करते हैं ना कि नहीं करते। आज तक भी देखो उसका दिन रात बाबा 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 ज्ञान योग बस है ना, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, योगी बनना है, भक्त नहीं, विद्वान नहीं, पंडित नहीं, ज्ञानी नहीं, सिर्फ सेवाधारी नहीं। अल्टीमेट लक्ष्य हमारा संपूर्ण कर्मातीत योगी। और योगी के लिए कहते हैं ना गीता में कि योगी तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसे शब्द है। योगी तो मेरा ही स्वरूप है। तो योगी बनना माना क्या बनना है, बाबा का स्वरूप बनना है, बाप समान बनना है। ये स्थिति हमारी बनती जानी चाहिए। तो कहेंगे हमारा अभ्यास यथार्थ एक्यूरेट चल रहा है। कोई भी चीज आप सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं भाई। पहले आप रोटी बेलेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी होंगी, पर सीखते 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 फिर अच्छी बनाना सीख जाते हैं। गाड़ी चलाना आप सीखते हैं सीखते हैं, गिरेंगे चोट भी लगेगी, पर सीखते रहते हैं तो फिर कहते हैं ना अब तो मेरी मास्टरी है। तो आपने यथार्थ अभ्यास किया वो तब माना जाएगा जब आप वो चीज सीख जाएंगे परफेक्टली, तो कहेंगे कि उसने प्रैक्टिस सही की है ना। वे रोज प्रैक्टिस करे, रोज प्रैक्टिस करे, पर सीखे कुछ नहीं, मास्टरी ना आए तो सब कहेंगे ना तो आप क्या सीखते हो, आता तो है नहीं कुछ। आप तीन मास से प्रैक्टिस कर रहे हैं पर आपको कुछ आया तो नहीं, आपने बरोबर प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस करना माना परफेक्शन आना, परिपक्वता आना, मास्टरी आना। हम रोज ज्ञान योग करते हैं ना, रोज क्लास करते हैं, रोज ज्ञान योग हम करते हैं, तो रिजल्ट आना चाहिए कि ये योगी बनते जा रहे हैं। आप रोज आते हैं तो रोज सब देखते तो है ना, जिस गली से रास्ते से आप आते हैं तो सब देखते हैं ना कि भाई ये सफेद कपड़े पहन के रोज जा रहे हैं। आपके घर वाले भी तो जानते हैं ना कि ये रोज जाते हैं। हम कहते हैं ना भी हम अभी नहीं काम करेंगे, हम ये क्लास करेंगे फिर आके ये काम करेंगे, तो सबको पता है। तो वो कहेंगे ना रोज जाते थे तो आप क्या बने बताइए, किसमें मास्टरी आई आपकी, किसमें आपका परफेक्शन आया है। तो वो बाबा कहते हैं ना चेहरे और चलन से दिखाना है और प्रैक्टिकल, कैसी भी बातें आए, परिस्थितियां आए, विघ्न आए, उस समय अपनी अच्छी ऊंची है ना ज्ञान युक्त धारणा युक्त स्थिति रख कर बताना है। तो लोग कहेंगे हाँ इनके सामने बहुत बड़ा पेपर आया पर इनकी अवस्था बहुत अच्छी रही, ऐसे कहते हैं ना। तो ये रिजल्ट हमें बताना है भाई, 10 साल से चले तो क्या रिजल्ट है, 20 साल 40 साल तो क्या रिजल्ट है ना। जितना हम सीनियर बनते हैं तो उतना और अच्छा रिजल्ट देना पड़ता है ना, देना होता है। तो ये दिखाना है। और जब आपकी स्थिति है शक्तिशाली तो परिस्थिति आपको भारी नहीं लगेगी, फिर आपको पेपर नहीं लगेगा, है ना। हम नए नए होते हैं तो घड़ी घड़ी कहेंगे कि आज तो बहुत पेपर आया, आज तो बहुत परीक्षा हुई, आज तो ऐसी माया आई, आज तो ऐसा पेपर आया। पर जब आपकी स्थिति बन जाएगी फिर आपको वो बातें पेपर लगेगी ही नहीं, है ना। फिर कितनी भी बातें आएंगी तो भी अंदर से आप अच्छा लड़ोल रहेंगे, आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं, बार बार वर्णन में आएगा ही नहीं। नहीं तो रोज कहेंगे दीदी आज ये हुआ, दीदी आज वो हुआ, नहीं। अपने आप शक्तिशाली बन जाएंगे और पार कर देंगे। तो दिन प्रतिदिन बाबा ने इस वर्ष को वैसे भी क्या कहा है, समाप्ति वर्ष, तपस्या वर्ष। तो अब तो अंतिम पेपर की तैयारियां है ना, क्योंकि समाप्ति माना फाइनल पेपर, फाइनल पेपर। फिर वो शरीर की बीमारी के हैं, आपस में देह संबंधों के, स्वभाव संस्कार हिसाब किताब के पेपर है, प्रकृति के पेपर है। प्रैक्टिकल होना है ना, प्रैक्टिकल होना है। तो अब ये फाइनल पेपर है, तो जो छोटे 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 पेपरों में संगम युग में पास होते रहे हैं वो अंतिम पेपर में पास हो जाएंगे, है ना। जो कहीं भी अटके नहीं, अपनी स्थिति निश्चय लगन पुरुषार्थ मजबूत रखकर कितनी भी बातें आई पर पार कर दी। तो बाबा कहते हैं ना जो छोटे छोटे पेपर में पास होते हैं विजयी बनते जाएंगे बनते जाएंगे, वो आखिरी पेपर भी पास करते हैं। आखिरी पेपर को पास करने के लिए और कोई चीज नहीं, खुद की अपनी शक्तियां, खुद की अपनी स्थिति ही अपने को मदद करेगी। क्योंकि अपने बल से अपने जीवन की नैया को पार करना है। बाबा तो मददगार है ही, वो तो साथी है ही, उसने ही तो ज्ञान दिया है, उसने ही तो इतना हमें सिखाया है ना। बाबा से योग है तब तो इतनी शक्ति आई है। क्यों भक्ति में शक्ति नहीं आई, अब क्यों शक्ति आई? क्योंकि बाबा से डायरेक्ट योग है ना। तो बाबा तो है ही हमारी मदद में, पर हम हिल जाएंगे तो मदद कैसे मिलेगी, है ना। हर हाल में बाबा बाबा करते रहेंगे तो मदद मिलनी ही है और विजयी बननी है। तो समाप्ति वर्ष माना घबराने की बात नहीं है, घबराते तो नहीं हो ना, डरने की बात नहीं है। कईयों को डर लगता है कि पता नहीं विनाश के समय क्या होगा हमारा, है ना। कुछ भी नहीं, हम बाबा की छत्र छाया में, बाबा याद है, बाबा की श्रीमत पर हैं, तो बाबा हमारा जिम्मेवार है, हमें मदद मिलेगी। तो डरने की बात नहीं है, डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी, भय नहीं। जो सारा वर्ष अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको परीक्षा के समय डर नहीं लगता है। जो अपना अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाते हैं उनको कैसा भी नुकसान आ जाए, खर्च आ जाए, तो वो घबराएंगे नहीं, क्योंकि जमा है। तो हमने भी अच्छी पढ़ाई की है संगम युग में, तो परीक्षा का भय नहीं। हमने सत्कर्म करके जमा खाता बनाया है तो कैसे भी अंत के पेपर में चिंता की बात नहीं, क्योंकि हमारे सत्कर्म ही हमारी सेफ्टी करेंगे। कहते हैं ना कि भाई इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ पर उनके पुण्य बीच में आ गए तो बच गए, देखो ऐसे कहते हैं ना लोग। तो अगर हमने संगम युग में सत्कर्म जमा किए हैं, सत्कर्म तो हम सभी करते हैं, है ना, सभी सेवा में मददगार है, बाबा के सहयोगी हैं हम सब, तन मन धन मन वचन कर्म समय सब कुछ बाबा के सेवा में लगा रहे हैं। पर मैपन आया तो हिसाब कम हो जाएगा, अभिमान आया और कम हो जाएगा। वर्णन करते रहेंगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, पता है मैंने सेंटर में ये लेके दिया, पता है मैंने, तो बाबा कहते हैं ना जितना आप बता वर्णन करेंगे वो माइनस होता जाएगा। तो जमा करने हैं, सत्कर्म करना, सफल करना एक बात है, जमा करना दूसरी बात है। हम सेवा बहुत करें पर अभिमान करेंगे तो जमा में से कम होता जाएगा। तो जिसका जमा होगा उससे कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। जिसने बाबा को साथी बना लिया है ना, कहीं बाबा के बनते हैं पर निमित्त मात्र बस। अभी भी उनको दुनिया ग्रस्ती लौकी की सब कुछ है, निमित मात्र बाबा और सर्वस्व ग्रस्ती, तो बाबा को साथी तो नहीं बनाया ना। जिन्होंने बाबा को अपना सर्वस्व बनाया, बाकी हाँ निमित मात्र हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें अपना अपना रोल प्ले करना है, तो वो करना है, उसकी कोई ना नहीं है। पर बाबा हर बात में पहले, बाबा पहले, ऐसे नहीं पहले दुनिया बचे तो बाबा को मदद करना, नहीं तो बाबा को अपने अपना नहीं बनाया। तो जो बाबा को सर्वस्व बनाता है तो बाबा साथी है, तो जिनको बाबा साथी है उनको डर नहीं रहेगा। तो समाप्ति की तैयारियां करनी है पर चिंता डर भय नहीं रखना है ना। हम तैयार हैं, बाबा ने हमें बहुत पढ़ाया है, विजय हमारी निश्चित है, सफलता हमारा अधिकार है, क्योंकि हम श्रीमत पर है, बाबा हमारा साथी। तो फिर बाबा कहते हैं ना अपने आप, वो कहते हैं ना इतना जमुना में बाढ़ आई थी और बरस ही रहा था तो भी कृष्ण को लेके जा रहे थे वासुदेव, तो रास्ता होता जाता था, बताते हैं ना सा शास्त्रों में। तो वो किसका गायन है? हाँ वो तो संगम युग का गायन है ना, कृष्ण सतयुग में जन्म लेंगे उस समय की बात थोड़ी है, संगम युग की बात है कि कितनी भी परिस्थितियों की वर्षा हो रही हो, क्योंकि बाबा ने तो बता दिया है पहले से कि पहाड़ गिरने हैं, परिस्थितियों के पहाड़, दुखों के पहाड़ गिरने, तो वर्षा तो बहुत होगी विघ्नों की, ऑलरेडी विघ्नों में होंगे, ऊपर से विघ्नों की वर्षा भी होंगी, पर जो बाबा की छत्र छाया में है, बाबा बाबा में है, उनके रास्ते होते जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। तो निश्चिंत है ना सभी? हाँ देखो आवाज नहीं आ रही है, अंदर अंदर डर तो नहीं रहे, तो चलो अभ्यास करेंगे।
आदरणीय गीता बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, बिजनेस इंडस्ट्री विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आप 14 वर्ष की आयु में सूरत गुजरात में ज्ञान में आए, स्टूडेंट लाइफ में आप मेधावी छात्रा रही हैं, 72 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया है, और पहले आपने अहमदाबाद बड़ौदा भरूच और सूरत में सेवाएं दी, फिर 14 साल तक आप भावनगर सब जोन की संचालिका रही। 93 में आप यहां ज्ञान सरोवर में, क्योंकि उस समय ज्ञान सरोवर बना था और वो ज्ञान सरोवर के निमित्त आप यहां जो आवास निवास प्रभाग है, रिसेप्शन है, उसकी प्रभारी रहीं। दादी मनोहर के साथ आप इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी सहयोगी रहे, और अभी कुछ वर्षों से आप शांतिवन में अपनी सेवाएं देते हैं। यहां जितने भी कार्यक्रम होते हैं आप सभी जानते होंगे, गीता बहन जी के क्लासेस सभी सुनते हैं, सभी कार्यक्रमों में अनेक विषयों पर आप वक्तव्य देते हैं, बहुत अनुभवी वक्ता हैं। और आपके लिए मैं कहूंगी विदेशों में भी आपने सेवाएं दी हैं अनेक स्थानों पर जाकर। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई, फूल बहुत खिलते हैं गुलशन में, खुशबू देता है कोई कोई। तो आप बाबा की बगिया के वो रूहानी खुशबूदार फूल हैं जिनके गुणों की खुशबू पूरे विश्व तक फैली हुई है। तो अभी हम योग अभ्यास करेंगे, लेकिन
थोड़ा हल्के हल्के जंप लगाइए। हाँ, शरीर देख के लगाना है, जो लगा सकते हैं वो तो लगाएं ताकि हाथ पांव अच्छे हो जाएंगे। बहुत अच्छे, देखो सब कठपुतली जैसे लग रहे हैं, खड़े खड़े दौड़े अपने स्थान पर ही। हाँ, गुड गुड, माताएं भी दौड़ रही है, देखो बहुत अच्छा। अब दो दो की जोड़ी बन जाइए और आमने सामने खड़े हो जाइए। एक पार्टनर चुन लीजिए, भाई आगे पीछे आओ, पार्टनर बन जाओ, आ जाइए ये भाई जी के साथ। माताएं देख लो आगे पीछे, पहले सुन लीजिए क्या करना है। भट्टी में आज सारे दिन में जो भी क्लास चली है उसमें से कौन सी पॉइंट आपको अच्छी लगी याद करो। कितने क्लास हुए आज? तीन क्लास हुए ना, सुबह दो क्लास हुए हा? और अभी एक, तीन क्लास हुए, तो तीन पॉइंट याद करो, तीनों क्लास में से एक एक पॉइंट। याद करो तो याद आ जाएगा। सूर्य भाई जी का क्लास हुआ, फिर और किसका हुआ? डॉक्टर बनारसी भाई का हुआ, और है गीता बहन का हुआ है। अब याद करो तीनों क्लास में से कौन सी पॉइंट आपको पसंद आई, याद करो, मन में याद करना है। बाबा ही कैसा है, हम तो निमित होते हैं, इसलिए तीन क्लास में से कौन सी पॉइंट आपको पसंद आई, तीन पॉइंट याद करो मन में, पहले मन में याद करो। तीन पॉइंट किसको याद आ गई, हाथ ऊपर करें। याद आ गई? नोटबुक खोल लो। नहीं, याद कर ली ना? अब आप अपने पार्टनर को तीन पॉइंट कान में सुनाओ, कान में, हाँ बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, पर क्लियर बोलना ताकि बरोबर समझे पार्टनर भी। कान में सुनाओ, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, हो गया? आप उनको सुनाएं, वो आपको सुनाएं, ऐसे नहीं एक ही सुनावे, वो आपको सुनावे, आप उनको सुनाओ। तीन पॉइंट मिलके छह पॉइंट कान में सुनानी, कान में सुनानी है ना। अच्छा, बाबा के सामने हो जाओ। बता दिया, माताएं तो थक गई देखो है? माताएं थक गई लगता है। अब पार्टनर दूसरा बना लीजिए, फिर दूसरी एक्सरसाइज करनी है। अब पार्टनर चेंज करिए, आगे पीछे बन जाए, आसपास बन जाइए। पहले सुनिए क्या करना है। ये भट्टी का अंतिम सत्र है ना, ऐसा ही है ना। कल तो आप फिर शांतिवन में चलेंगे, तो अब आप भट्टी के बाद वापस घर जाएंगे तो स्वयं में मुख्य क्या परिवर्तन लाएंगे, इस भट्टी के बाद क्या विशेष धारणा करेंगे आप? कुछ नवीनता तो आनी चाहिए ना हमारे में। मधुबन में आपने तपस्या की है तो रूप रंग बदलना चाहिए, तो कौन सा विशेष परिवर्तन करेंगे, माना कौन सी विशेष धारणा करेंगे आप? नया क्या आप ऐड करेंगे पुरुषार्थ में, है ना? अब तक तो आप पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, धारणाओं में चल रहे हैं, पर क्या नवीनता अपने में धारण करेंगे? इस भट्टी के बाद आप अपने में क्या विशेषता लाएंगे? बोलना नहीं है, जो कुछ करेंगे वो मन में लाइए और नए पार्टनर के साथ शेयर करें। अब नए पार्टनर के साथ बताइए, वो आपको बताएं और आप उनको बताएं। जो करने वाले हो वो ही बताना। लो माताएं तो गले लग गई हा? बताओ माताएं, एक दो को बताओ, प्यार से चलेंगे, अच्छी बात है। हो गया, बैठ जाइए। जिन्होंने बता दिया वो बैठ जाए। अब कौन सी पैर, कौन सी जोड़ी आकर बताएंगी यहाँ? कौन सी जोड़ी बताएंगे यहाँ आकर माइक पर? भट्टी के बाद विशेष हम अपने में ये धारणा करेंगे, ये नवीनता लाएंगे, ये विशेषता अपनाएंगे। दोनों जोड़ी हाथ ऊपर करें। जो शेयर करेंगे वो आपका पार्टनर कौन है? पार्टनर के साथ आना है। अच्छा, खड़े रहिए। और माताओं में से कौन आएगा? आपका पार्टनर कौन है? पार्टनर के साथ आना है, अकेले नहीं आना है। कोई नहीं बहनों में, कुमारियां, बहने, माताएं, आपकी जोड़ी कौन है? जोड़ी के साथ आने, आओ आओ, बहुत अच्छा। माइक देना भैया। हाँ ये माइक ले, यहाँ आगे आओ इस तरफ, इधर इधर आगे नीचे नीचे। देखो शरीर का नाम बताना है, सेंटर का नाम बताना है, और कौन सी नवीनता अब धारण करेंगे वो एक पॉइंट बताना है बस।
ओम शांति। मेरा नाम सुभाष कौर है, शरीर का और जीन सेंटर से रिलेटेड है। और मैंने सूरज भाई ने जो क्लास करवाई उससे मेन पॉइंट लिया है कि दिन में कम चार बार योग तो मैं आज से ही जरूर करूंगी।
वेरी गुड, ताली बजाओ। अब उसको दो।
ओम शांति। शरीर का नाम अनीता बहन, नरवाना सेंटर से। आज से सूरज भाई ने बताया था, वही मेरे को पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि बाबा को कम से कम 10 बार बाबा को याद करना है शॉर्ट में, इससे हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा। और 4 बार बाबा का आह्वान करना है नीचे, तो उससे हमारी स्थिति ऊंच होगी। तो मैं ये आशय करूंगी।
बहुत
ओम शांति।
ओम शांति। शरीर का नाम वेद प्रकाश, जिन सेंटर से। जैसे सूरज भाई ने बताया कि हमें भिन्न भिन्न स्वमान चेंज करते रहना है, इससे आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कौन, मैं किसकी संतान, ऊंच से ऊंच सर्वशक्तिवान उसकी संतान, और मेरा कार्य ऊंच से ऊंच होना चाहिए। और दूसरे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम कौन है, हम उसके इंजीनियर हैं, हम जो सर्वशक्तिवान है उसके हम साथ में इंजीनियर हैं। तो हमें आज से ही अपने सम्मान को ऊंचा करना है, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कोई भी संकल्प, ऐसा संकल्प लेना ही नहीं जिससे हमारे स्थिति डाउन हो। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा शरीर का नाम कृष्ण कुमार, मुख्य सेंटर जींस है। मैंने यहां भट्टी में आकर के 2 संकल्प लिए हैं, जिन्हों को मैं बाबा की याद में हमेशा पूरा करने की कोशिश करूंगा। एक तो 8 घंटे का नित्य मौन व्रत और 4 घंटे का योग। सूरज भाई ने कहा है ना, 20-20 साल चलने वाली आत्माएं, 40-40 साल वाली आत्माएं भी झटका खा गई क्योंकि वे योग युक्त नहीं थे। तो ये मैं बापा से प्रतिज्ञा करता हूँ, 8 घंटे का मौन व्रत और 4 घंटे का योग होगा।
कोई कुमार नहीं आए, कुमारों ने शेयरिंग नहीं की। आओ दोनों।
ओम शांति। शरीर का नाम रोहित, मैं हिमाचल से अभी आया हूँ, और अभी हमने भट्टी तो अटेंड नहीं की, लास्ट क्लास जो अभी दीदी ने कराई वो अटेंड की। तो उसमें से एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि 10 साल अगर ज्ञान में हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन मास्टरी क्या है हमारी, है ना, उसका रिजल्ट क्या है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि अगर हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो दिखनी चाहिए, परफेक्शन दिखनी चाहिए, वो चेहरे और चलन से दिखना चाहिए कि हमने मास्टरी क्या की है। नहीं तो लोग कहेंगे प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन आप रिजल्ट तो कुछ नहीं किया कि आपने। तो ये बहुत अच्छा लगा, और इसी पर ही मुझे लगा कि पुरुषार्थ करूंगा अब कि हमारी मास्टरी दिखे सबको, दुनिया को। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा शरीर का नाम राकेश कुमार है, और मैं भी हिमाचल से हूँ और मैंने भी ये लास्ट क्लास अटेंड किया है। इसमें मेरे को दीदी जी का बात बहुत अच्छा लगा, एक कि हमें इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त होना है, क्योंकि हम सभी में कहीं ना कहीं इंद्रियों का आकर्षण होता है, घूमने का, खाने का, पीने का, कितना भी चाहते हैं पर हम उसको रोक नहीं पाते। तो मैं यही कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं करूंगा बल्कि करूंगा ही कि मैं इससे मुक्त हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
बहुत सुंदर। और कुमारियां कोई नहीं आई है? कुमारियां कौन आई है? पर आपका पार्टनर कौन है? अच्छा, और कोई कुमारी आई है भट्टी में? एक ही कुमारी आई है। आजा आजा, एक टीचर आ जाओ, आओ आओ। कुमारियों को तो आगे भी बोलना ही है बाबा का ज्ञान, तो आ जाओ आ जाओ। देखो पीछे से देखो, कुमारी आई ना ऊपर से।
शरीर का नाम बीके ललिता, जीन सेंटर से। इस भट्टी में मैंने ये पक्का किया कि अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है कि हम विश्व की अनेक आत्माओं के दुख दर्द को, परेशानी को दूर कर सके। इतनी पावरफुल स्थिति बनाकर जानी है और वहां भी ये मेंटेन करके रखनी है। ओम शांति।
ओम शांति। शरीर का नाम मेरा निकिता है, मैं जीन सेंटर से हूँ। मैं यहाँ इस भट्टी से ये लेके जा रही हूँ कि जो भी संकल्प करूंगी उसे पूरी दृढ़ता से अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगी, चाहे वो किसी भी चीज का संकल्प हो। यहाँ से जितने भी मैं संकल्प लेके चल रही हूँ उसे दृढ़ता से जरूर अप्लाई करूंगी अपनी।
एक बताओ।
जैसे अमृत वेला उठना।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो बाबा को याद करेंगे सार रूप में, हम क्या क्या अंडरलाइन करेंगे आगे स्वयं में 7:30 बजे तक बाबा की याद में बैठेंगे। दो टीचर बहने यहाँ आ जाओ। पहला अभ्यास, हम सभी एक ही संकल्प से करेंगे। जो संकल्प मैं दूं उसके बाद फिर वो अभ्यास हम करें। पहला अभ्यास, मैं स्वयं एक लाइट हूँ, माइट हूँ। ज्योति बिंदु, चैतन्य शक्ति पुंज, इसी पर गहराई से चिंतन करें और स्वयं को महसूस करें। शरीर मिट्टी है, मैं आत्मा शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ,
तो ये शरीर चलता है। कर्म करता है। मैं आत्मा इस शरीर से निकल जाऊं तो शरीर डेड हो जाता है, मर जाता है। इस शरीर रूपी गुफा में मैं जगमगाता चैतन्य दीपक, चमकती चैतन्य मणि हूं। बैठे बैठे राइट साइड घूम जाइए, दूसरा अभ्यास मैं डबल लाइट हूं, प्रकाश बिंदु भी और हल्कापन भी। अब यह शरीर भी लाइट का है, लाइट के आकार में ज्योति बिंदु। ये हाथ भी प्रकाश के हैं, पांव भी प्रकाश के हैं, ये तो नैन लाइट के बल्ब हैं, मस्तक बीच मैं चमकता चैतन्य हीरा। मैं बिल्कुल लाइट हल्की हूं, मैं न्यारी और प्यारी। पापों की, अवज्ञाओं के, भूलों के बोझ से मुक्त, अब मैं श्रीमत पर बाबा की छत्र छाया में सलामत मैं डबल लाइट आत्मा फरिश्ता लेफ्ट साइड घूम जाए बाबा के सामने हो जाए तीसरा अभ्यास लाइट के आकार में लाइट के वतन में मैं सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता चमकीली फरिश्ता ड्रेस में चमकीले सूक्ष्म वतन में संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त बाप दादा के संग वतनवासी लाइट के वतन में मैं डबल लाइट फरिश्ता लेफ्ट साइड घूम जाए